नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। सरकार ने 21 जुलाई से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई। भारत ने सुरक्षा चिंताओं के मद्देनजर अपने नागरिकों को ईरान की अनावश्यक यात्रा न करने की सलाह दी। वित्त कार्रवाई कार्यबल ने डिजिटल युग में आतंकी गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराने संबंधी जोखिमों की चेतावनी दी, इसमें पाकिस्तान की भूमिका को उजागर किया। सीबीएसई ने विद्यार्थियों में स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों से तेल बोर्ड की स्थापना करने को कहा। और बैडमिंटन में लक्ष्य सेन सिंगल्स में तथा सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी डबल्स जापान ओपन के दूसरे दौर में पहुंची। महिला क्रिकेट में भारत तथा मेजबान इंग्लैंड के बीच 3 एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज शाम साउथहैम्पटन में। दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग का आह्वान करेगी। मॉनसून सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और पारित किए जाने की संभावना है। भारत ने अपने नागरिकों से ईरान की अनावश्यक यात्रा से बचने को कहा है। ईरान में बढ़ती सुरक्षा चिंताओं के बीच ये परामर्श जारी किया गया है। ईरान में भारतीय दूतावास ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में भारतीय नागरिकों को ईरान यात्रा से पहले स्थिति पर सतर्कता से नजर रखने और भारतीय प्राधिकरणों से जारी परामर्शों पर भी ध्यान देने को कहा है। वर्तमान में ईरान में रह रहे और स्वदेश लौटने के इच्छुक भारतीय नागरिकों को वाणिज्यिक उड़ान और अन्य विकल्पों की मदद लेने का परामर्श दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ को जम्मू कश्मीर में तैनाती के लिए 20,000 से ज्यादा जवानों को शामिल करते हुए 20 नई बटालियन बनाने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। आकाशवाणी के जम्मू संवाददाता ने बताया है कि शुरुआत में सीआरपीएफ ने 35 बटालियनों के लिए मंजूरी मांगी थी, लेकिन 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले और उसके बाद शुरू हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद मंत्रालय ने तत्काल उपाय के तौर पर 20 बटालियनों को मंजूरी दी है। वित्त मंत्रालय इस प्रस्ताव को पहले ही मंजूरी दे चुका है और केंद्रीय मंत्रिमंडल से भी जल्द ही इसे स्वीकृति मिल सकती है। नई बटालियनें जम्मू कश्मीर के भूभाग और सुरक्षा जरूरतों के अनुरूप उन्नत परिचालन क्षमताओं से लैस होंगी और इस कदम को एक व्यापक रणनीतिक पुनर्संयोजन के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने ड्रोनों और अन्य मानव रहित हथियार प्रणालियों का इस्तेमाल किया था, जिन्हें भारतीय सेना ने निष्क्रिय कर दिया। नई दिल्ली में एक कार्यशाला को संबोधित करते हुए जनरल चौहान ने कहा कि पाकिस्तान के किसी भी ड्रोन से भारत के सैन्य या नागरिक बुनियादी ढांचे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। जनरल चौहान ने कहा कि देश को अपनी सुरक्षा के लिए रक्षा क्षेत्र में निवेश और विनिर्माण पर अधिक ध्यान केंद्रित करना होगा, क्योंकि विदेशी तकनीक पर निर्भरता हमारी तैयारियों को कमजोर करती है।
Operation Sindoor has showed us as to why internationally developed counter-UAS systems built for our terrain and our needs are crucial. We cannot rely on imported niche technology that are crucial for our offensive and defensive missions. We must invent and build and safeguard ourselves. Dependence on foreign technologies weakens our preparedness, limits our ability to scale up production, results in shortfall of critical spares for sustenance and round-the-clock availability.
वैश्विक आतंकवाद वित्त पोषण निगरानी संस्था वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF ने तेजी से डिजिटल हो रही दुनिया में धन के दुरुपयोग से जुड़े संभावित खतरों को उजागर किया है। FATF ने कहा कि धन का दुरुपयोग आतंकवाद को समर्थन देने, अवैध कमाई छिपाने या वैश्विक शांति को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों के लिए किया जा सकता है। एक रिपोर्ट।
FATF ने इस वर्ष प्रकाशित अपनी दो रिपोर्टों पर भी प्रकाश डाला है, जो जटिल वित्त पोषण प्रसार और प्रतिबंधों की अवहेलना तथा आतंकवादियों को धन पहुंचाने के जोखिमों से संबंधित है। FATF ने कहा कि इन रिपोर्टों में उन्नत तरीकों को व्यापक रूप से शामिल किया गया है, जिनमें प्रतिबंधित व्यक्तियों और संस्थाओं की पहचान छिपाने के लिए लाभकारी स्वामित्व की जानकारी में हेरफेर, आभासी संपत्तियों और क्रिप्टो करेंसी का दुरुपयोग और अंतर्राष्ट्रीय नियमों को दरकिनार करने के लिए समुद्री क्षेत्रों और शिपिंग उद्यमों का लाभ उठाना शामिल है। इस बीच भारत द्वारा प्रस्तुत एक मामले के अध्ययन में दक्षिण एशियाई क्षेत्र में पाकिस्तान के सरकारी स्वामित्व वाले राष्ट्र विकास परिसर से उत्पन्न होने वाली प्रसार संबंधी चिंताओं को उजागर किया गया है। इस परिसर पर प्रसार वित्त पोषण संबंधी चिंताओं के कारण कई देशों में प्रतिबंध लगा हुआ है। इसमें कहा गया है कि प्रसार वित्त पोषण के लिए पाकिस्तान इस क्षेत्र में उच्च जोखिम वाला क्षेत्र बना हुआ है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
श्रीलंका के 14 राजनीतिक दलों के 24 सदस्यीय शिष्टमंडल ने आज नई दिल्ली में विदेश सचिव विक्रम मिश्री से भेंट की। बैठक के दौरान विदेश सचिव ने भारत श्रीलंका भागीदारी को बढ़ाने के लिए भावी रूपरेखा तैयार करने में संबंधित पक्षों के रूप में शिष्टमंडल के योगदान की सराहना की। सोशल मीडिया पोस्ट पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि युवा राजनीतिक नेताओं का शिष्टमंडल 2 सप्ताह के कार्यक्रम के लिए भारत में है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने विद्यार्थियों में स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों में तेल बोर्ड स्थापित करने को कहा है। CBSE ने इस संबंध में सभी स्कूल प्रमुखों को पत्र लिखा है। एक रिपोर्ट।
CBSE ने पौष्टिक और स्वास्थ्यवर्धक भोजन विकल्पों की उपलब्धता और गतिविधि उपायों के माध्यम से स्कूलों में स्वस्थ भोजन और शारीरिक गतिविधियों को बढ़ावा देने को कहा है। बोर्ड ने विद्यार्थियों को सीढ़ियों का उपयोग करने, छोटे व्यायाम अवकाश आयोजित करने और पैदल चलने के मार्गों को सुगम बनाने के लिए भी कहा है। वैश्विक रोग भार GBD 2021 मोटापा पूर्वानुमान अध्ययन के अनुसार भारत में अधिक वजन और मोटापे से पीड़ित वयस्कों की संख्या 2021 में 18 करोड़ से बढ़कर 2050 तक लगभग 45 करोड़ होने का अनुमान है, जिससे ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोटापा वाला देश बनने की आशंका है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
सरकार ने कहा है कि राष्ट्रव्यापी वित्तीय समावेशन अभियान के पहले 2 सप्ताह में 1,40,000 जनधन खाते खोले गए हैं। वित्त मंत्रालय ने कई प्रमुख योजनाओं की पहुंच को मजबूत करने के लिए इस महीने की पहली तारीख से 3 महीने का यह अभियान शुरू किया है। इसमें प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना शामिल हैं। ये अभियान सभी ग्राम पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों में चलाया जा रहा है, जिससे प्रत्येक पात्र नागरिक इन परिवर्तनकारी योजनाओं का लाभ उठा सके। झारखंड में बोकारो जिले के जागेश्वर विहार थाना क्षेत्र के अंतर्गत काशी लुगु पर्वतमाला के काशीटांड जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ में 2 नक्सली मारे गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस मुठभेड़ में कोबरा बटालियन का एक जवान उस समय शहीद हो गया जब उसे गंभीर रूप से घायल होने के बाद बोकारो जिले के जंगल से रांची ले जाया जा रहा था।
झारखंड के बोकारो जिले में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच आज हुई मुठभेड़ में 2 नक्सली मारे गए। 5 लाख रुपए के इनामी भाकपा माओवादी के सब जोनल कमांडर कुंवर मांझी और शाहदेव मांझी को भी सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। 2 महीने के भीतर सुरक्षा बलों की यह एक और उपलब्धि है जहां कट्टर और इनामी नक्सली मारे गए हैं। इससे एक दिन पहले JJMP के एरिया कमांडर लवनेश गंजू ने भी लातेहार पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया था। शिल्पी, आकाशवाणी समाचार, रांची।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। देश में आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सराहना दिवस मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य विश्व में AI क्षेत्र में भारत की बढ़ती भूमिका को उजागर करना है। एक रिपोर्ट।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से आज स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कृषि, शासन और उद्योग जगत में बड़े बदलाव हो रहे हैं। सरकार का सभी के लिए AI और AI के लिए राष्ट्रीय रणनीति का उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग से न केवल आर्थिक विकास बल्कि जीवन को बेहतर बनाने, समावेशिता सुनिश्चित करने और समानता को बढ़ावा देना भी है। AI क्षेत्र को और विकसित करने के लिए सरकार ने स्किल इंडिया AI पोर्टल, राष्ट्रीय AI कौशल कार्यक्रम और AI युवा बूट कैंप जैसे कार्यक्रम शुरू किए हैं। इनके माध्यम से छात्रों और श्रमिकों को व्यवहारिक प्रशिक्षण और प्रमाणन प्रदान किया जाता है। व्यवसायिक केंद्र भी पारंपरिक उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए AI उपकरण अपना रहे हैं। समाचार कक्ष से मनोज।
मौसम विभाग ने अगले दो दिन में देश के पूर्वी हिस्सों में और मध्य भारत के आसपास बहुत तेज वर्षा जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। अगले 6 से 7 दिन के दौरान केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में भी अत्यधिक वर्षा का अनुमान है। दिल्ली में भी आज हल्की बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर में आने वाले दिनों में बहुत तेज वर्षा, बाढ़, भूस्खलन की चेतावनी जारी की गई है। उधर उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आज रुक रुक कर हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में अगले कुछ दिनों में वर्षा होने का अनुमान है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
नैनीताल, चमोली, बागेश्वर, पौड़ी, देहरादून, टिहरी और रुद्रप्रयाग समेत कई जिलों में अगले कुछ दिनों तक गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इस दौरान कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार पर्वतीय इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं होने के साथ ही कुछ स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं भी चल सकती हैं। मौसम विभाग ने संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने का आह्वान किया है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षकों के साथ हुए अपराधों पर सजा सुनिश्चित करने की मांग की है। भारत ने कहा है कि शांति रक्षा मिशनों की सफलता के लिए जवाबदेही तय करना रणनीतिक रूप से आवश्यक है। संयुक्त राष्ट्र ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स की एक उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि शांति रक्षकों को खतरनाक इलाकों में सेवा देते हुए गंभीर अपराध खतरों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उनके साथ होने वाले अधिकांश अपराधों के लिए सजा सुनिश्चित नहीं हो पाती। पिछले 70 वर्ष में भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों के लिए 3 लाख से अधिक शांति रक्षक भेजे हैं। इस मिशन के लिए भारत का योगदान सबसे बड़ा है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने दक्षिणी सीरिया के स्वेडा में जारी हिंसा पर चिंता जताई है। इस हिंसा में दर्जनों नागरिक हताहत हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने नागरिकों की हत्या, सांप्रदायिक तनाव और निजी संपत्ति की लूटपाट सहित सभी प्रकार के हिंसा की निंदा की है। महासचिव ने सीरिया के अधिकारियों और नेताओं से नागरिकों की रक्षा, शांति बहाली और सांप्रदायिक तनाव कम करने का आग्रह किया है। स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक के परपोते डॉ दीपक तिलक का बृहस्पतिवार को पुणे में उनके आवास पर निधन हो गया। वे 74 वर्ष के थे। उन्होंने तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ के कुलाधिपति और लोकमान्य तिलक द्वारा स्थापित मराठी दैनिक केसरी के संपादक के रूप में कार्य किया। डॉ तिलक नागरिकों की सामाजिक और राजनीतिक सेवा को बढ़ावा देने वाले तिलक स्मारक ट्रस्ट के अध्यक्ष और ट्रस्टी भी थे। ये ट्रस्ट राष्ट्र सेवा में योगदान के लिए प्रतिष्ठित तिलक पुरस्कार भी प्रदान करता है। जापान ओपन बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी दूसरे दौर में पहुंच गई है। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन ने भी दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। पुरुष डबल्स में सात्विक और चिराग ने पहले दौर में दक्षिण कोरिया के कांग मिन ह्यूक और किम डोंग जू को हराया। लक्ष्य सेन ने चीन के वांग झेंग जिंग को मात दी। वहीं 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु महिला सिंगल्स के पहले दौर में हार कर मुकाबले से बाहर हो गई हैं। भारत और इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीमों के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला का पहला मैच आज इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 5:30 बजे से शुरू होगा। घरेलू शेयर बाजार आज दोपहर के कारोबार में लगभग स्थिर रहा। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 24 अंक की बढ़त के साथ 82,596 और निफ्टी 8 अंक की बढ़त के साथ 25,200 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने 21 जुलाई से शुरू हो रहे मानसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई। भारत ने सुरक्षा चिंताओं के मद्देनजर अपने नागरिकों को ईरान की अनावश्यक यात्रा न करने की सलाह दी। वित्त कार्रवाई कार्यबल ने डिजिटल युग में आतंकी गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराने संबंधी जोखिमों की चेतावनी दी। इसमें पाकिस्तान की भूमिका को उजागर किया। CBSE ने विद्यार्थियों में स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों से तेल बोर्ड की स्थापना करने को कहा। और बैडमिंटन में लक्ष्य सेन सिंगल्स में तथा सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी डबल्स में जापान ओपन के दूसरे दौर में पहुंची। महिला क्रिकेट में भारत तथा मेजबान इंग्लैंड के बीच 3 एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज शाम साउथहैम्पटन में। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।